ये आकाशवाणी है। अब आप विकास मेहरोत्रा से समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है और यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। आज नई दिल्ली में श्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से 2022-23 में बड़ी सफलताएं मिली हैं। उन्होंने अगले दो वर्ष में वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह से सफाया करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से ऐसे क्षेत्रों में कमी आ रही है जहां उग्रवादी बचे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF के 195 नए शिविर लगाए गए हैं और 44 नए शिविर स्थापित किए जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि CAPF की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ तैनाती के साथ ही तर्कसंगत विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में यह समस्या वहां दोबारा उठ न सके, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति के परिणाम स्वरूप 2022 में हिंसा और मौतों का पिछले चार दशकों का सबसे निचला स्तर दर्ज किया गया। गृहमंत्री ने कहा कि इसके लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता को रोकने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल बनाकर प्रयास करना होगा। केंद्र ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक दल भी गठित किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज पाक्योंग के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतक लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपए की तत्काल राहत देने की भी घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम करने को कहा। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यवेक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, मतदाता सूची, आचार संहिता, खर्च और कानूनी प्रावधान जैसे चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेलपट में आज दो परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इम्फाल सिटी में टिकाऊ जल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए लामफेलपट जलाशय का पुनरुत्थान तथा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त इम्फाल के लिए सीवरेज की समेकित प्रणाली परियोजना के दूसरे चरण पर लगभग 1255 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे 19वीं महिला होंगी। नरगिस अभी जेल में हैं और ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं। चीन में हांगचू एशियाई खेलों में भारत ने आज एक स्वर्ण, दो रजत और 6 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते। पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तीरंदाजी में आज पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला है। पुरुषों की ब्रिज टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय को कांस्य पदक मिला। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। एक दिवसीय विश्व कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड ने 41 ओवर में 205 रन ही बना सकी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।